Surgió Me.
नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आर्थिक समीक्षा 2025-26 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मैं हूं अनुभा रोहतगी और इस चर्चा में मेरे साथ हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य। शुभमोय, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज संसद में आर्थिक समीक्षा 2025-26 पेश की। सबसे पहले सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
आई राइज टू ले ऑन द टेबल अ कॉपी ईच ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स, इकोनॉमिक सर्वे 2526, इकोनॉमिक सर्वे 2526 स्टैटिस्टिकल अपेंडिक्स।
शुभमोय, इस समीक्षा में पिछले साल के प्रमुख मैक्रो इकोनॉमिक रुझानों पर नजर डाली गई है, तो आपके मुताबिक तीन सबसे मुख्य बातें, इसकी तीन बिंदु क्या थे?
जी अनुभा जी, सबसे पहले मैं ये बता दूं श्रोताओं को कि भारत सरकार की जो बजट, सालाना बजट की जो पेश होती है 1 फरवरी को हर साल, इसके पहले हर साल फाइनेंस मिनिस्टर एक जो आर्थिक सर्वेक्षण जो संसद के पटल पर रखते हैं, वो एक तरफ आलोचना है, बिल्कुल ही जैसे वो कहता है समीक्षा है, कि पिछले साल जब बजट हुआ तब से लेकर अभी तक की सरकार की और विश्व व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में क्या क्या बड़े बिंदु हैं, क्या चुनौतियां सामने आई, क्या सॉल्यूशंस निकले, इन सब के बारे में एक विस्तृत आलोचना रहता है इस सर्वे का। इसकी महत्व इसलिए है क्योंकि ये बताते हैं कि सरकार के हिसाब से अर्थनीति, अर्थव्यवस्था किस तरह से चल रहा है। तो बजट जब पेश होता है तो बजट का एक जिसे कहते हैं फ्रेमवर्क क्या है, वो किस प्रसंग में उसके जो पहलू वित्त मंत्री रखेंगे अपने बजट में,
उनके आधार क्या हैं,
ये आर्थिक समीक्षा से पता चलता है। साथ में बहुत सालों से हो गया है कि आर्थिक समीक्षा में जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं वो भारत सरकार के हिसाब से उनके राय में आगे आने वाले साल में क्या चुनौतियां हैं, क्या खूबियां हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज है, तो साथ में क्या रिस्क है, इस बारे में अपना एक समीक्षा देते हैं और इसीलिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट दस्तावेज बन जाता है।
आज की अगर हम समीक्षा की बात करें, जो अभी वित्तीय वर्ष है इसकी जो समीक्षा की गई है, आपके हिसाब से तीन सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं?
ये साल भारत की वजह से नहीं लेकिन भारत के बाहर में जो आर्थिक उथल पुथल बना हुआ है, खासकर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारी नीतियों की वजह से और बाकी सारे उभरते चैलेंजेस जो पहले से ही थे, उन सभी चीजों के संवार से जो आर्थिक एक केओस बना हुआ है, उस केओस का भारत को उस पर क्या टिप्पणी है और सारी चीजों को मिलाकर भारत के लिए आगे चलने का रास्ता क्या बनता है, ये था सबसे बड़ा चीज कि भारत किस बारे में क्या कमेंट देता है। तो आज का सबसे बड़ा आर्थिक विश्लेषण का वो था सबसे बड़ा मुख्य बिंदु। दूसरा एक रहता है कि इस सर्वे में हमेशा भारत सरकार बताते हैं कि अपना ग्रोथ का अगले साल में जीडीपी का कितना ग्रोथ होगा, उसका एक नंबर या उसका एक अंदाजा दिया जाता है।
शुभमोय, क्योंकि आप जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले सुनते हैं कि जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है सरकार के, वी अनंत नागेश्वरन, उन्होंने ये आर्थिक समीक्षा पेश होने के बाद जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसके बारे में क्या कहा, चलिए सुनते हैं।
India's potential growth is 7% and that is why you saw that our GDP projection for 26-27 is between 6.8 and 7.2%. Of course, subject to geopolitical risk factors, commodity prices, etc., all of them can derail the calculations on a short-term basis. But on a sustained medium-term trend growth for the Indian economy, we believe now it is 7%.
हमने अभी श्री नागेश्वरन को सुना, उन्होंने बात की कि जो चालू वित्त वर्ष में जो भारत की जीडीपी वृद्धि है वो 7.4% रहने का अनुमान है और वित्त वर्ष 2027 में जो अब शुरू होने वाला है उसमें भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.8 से लेकर 7.2% तक रहने का अनुमान है। तो भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के पीछे क्या कारण है, जो उन्होंने बात भी कही आज?
जो भारत में जो आश्चर्यजनक रूप से दुनिया में इतने सारे उथल पुथल होने के बावजूद जीडीपी का जो एक सस्टेन्ड फास्ट पेस जो चल रहा है वो कोई मैजिक चीज नहीं है, ये कई सालों से सरकार की तरफ से कुछ मूलभूत रिफॉर्म्स का ही नतीजा है। उन रिफॉर्म्स में मैं मानता हूँ एक तो बैंकिंग क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार जो किया गया है जिसकी वजह से आज सारे बैंकों के हालत बहुत अच्छी तरह हो गए हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ही कम हो गए हैं, उनके बैलेंस शीट्स क्लियर हो गए हैं। बैंकरप्सी कोड आने की वजह से इंडस्ट्रीज में एक चुनौती आया है सामने कि अगर अच्छी तरह से अगर इन्वेस्टमेंट्स ना किया जाए तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। दूसरा चीज आया है कि जो टैक्स में रिफॉर्म्स किया गया और उसमें पिछले साल ही हमें देखने को मिला कि वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स में एग्जम्पशन का लिमिट 12 लाख तक उठा दिए और साथ में जीएसटी में सिर्फ दो रेट्स लाने की वजह से देश में एक जिसे कहते हैं बचत उत्सव जैसे प्रधानमंत्री जी ने जैसे व्याख्या किया था उसका दौर शुरू हो गया। और भी बहुत सारे हैं चीजें हैं इन टैक्स रिफॉर्म्स में बट वो भी एक बहुत बड़ा चीज है। और तीसरा भारत सरकार और कुछ हद तक राज्य सरकारें भी कैपेक्स यानी जिसे कहते हैं आधारभूत जो डेवलपमेंट्स इन चीजों में पैसा चालने का जो प्रक्रिया काफी त्वरान्वित किया गया है। पहले हम 1.7% ऑफ द जीडीपी था 2018 वगैरह में वो उठकर 3.3% ऑफ द जीडीपी तक हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया है और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जा रहा है रेलवेज में रोड्स में टेलीकम्युनिकेशंस में इसका रिजल्ट तो ऑफकोर्स दिख ही रहा है। तो ये सब चीजों की वजह से देश के अंदर जो व्यवसाय का जो क्षेत्र है वो काफी विस्तृत हो चुका है और ये विस्तृति ही देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो दौर को आगे ले चल रहा है। किस तरीके से ये और भी आगे जाएगा वो तो ऑफकोर्स आने वाले दिन ही बताएगा लेकिन अभी इस वक्त हम जो मूलभूत चेंजेस किए गए वो सच में सराहनीय है और इसी की वजह से आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस डेवलपमेंट का आंकड़ा आ रहा है। जी
शुभमय, आर्थिक समीक्षा में सेवा विनिर्माण क्षेत्रों के संबंध में भी बातें की गई। उसमें ये कहा गया है कि हालांकि सेवाएं निर्यात के लिए मुख्य आधार बनी हुई हैं, वे माल आधारित निर्यात पारिस्थितिक तंत्र का पूरी तरह विकल्प नहीं हो सकती, वो मैन्युफैक्चरिंग के उसके लिए बहुत जरूरी है। इसके बारे में आप हमें ज्यादा बताएं।
किसी भी अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का अपना एक रूप रहता है लेकिन हमारे देश में आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर का मोटा मोटी जितना विस्तार हो सकता था खासकर क्रॉप यील्ड्स में उसका मोर ऑर लेस लिमिट हम पहुंच चुके हैं। हम दुनिया के सबसे ज्यादा चावल के उत्पादक बन चुके हैं, गेहूं हमारा ऑलमोस्ट सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट है तो उसमें ज्यादा एक्सपेंशन का स्कोप नहीं है। बनता है एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन लाइव स्टॉक या फिशरीज के थ्रू से। तो लोग जो हैं जो अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे करीब 42-45% हमारे जो वर्कर्स वर्किंग का अभी भी हैं उनका फिर एम्प्लॉयमेंट उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज बनते हैं उससे इसलिए उनको एक तरफ से शहर में लाना एम्प्लॉयमेंट दिलवाना और साथ में उस एम्प्लॉयमेंट से क्या चीज निकलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग उनके हाथ से बहुत सारी मैन्युफैक्चर्ड चीजें बनेंगी। वो खुदरा एंटरप्राइजेस हो सकता है मीडियम एंटरप्राइजेस हो सकता है लार्ज एंटरप्राइजेस हो सकता है लेकिन इन एंटरप्राइजेस में हर तरीके का चीज बनाया जा सकता है जो लोगों के लिए जरूरी है और फिर वो चीजें दुनिया के बाजारों में भी बेचा जा सकता है। और भारत में इतना टोपोग्राफिकल वैरायटी की वजह से इतने तरीके का चीज हम बना सकते हैं और बनाने की क्षमता रखते हैं और बनाने का स्किल्स भी है कि हम इसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक्सपेंशन करना बहुत जरूरी है लेकिन चक्कर यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बहुत सालों से इसका एक्सपेंशन नहीं हुआ था जिसका हम कुछ पहले जिक्र कर रहे थे कि बैंकिंग क्षेत्र वगैरह में लिमिटेशन, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक्सपेंशन नहीं हो रहा था। और उसी की तरफ मुख्य आर्थिक सलाहकार ने ध्यान आकर्षण किया है कि उस सेक्टर का बढ़ावा देना, उस सेक्टर को एक्सपैंड करना, उस सेक्टर की जो पूरी पोटेंशियल है उसको सामने लाना बहुत जरूरी है।
एक और मुख्य बिंदु जो मुझे लगा कि महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु इस आर्थिक समीक्षा में वित्तीय घाटे की बात की गई। ये बताया गया कि कैसे कोविड के बाद से पिछले 5 सालों में जो सरकार ने जो वित्तीय घाटा है उसको ऑलमोस्ट आधा कर दिया है और अगर इस साल की बात करें तो ये आर्थिक समीक्षा कहती है कि जो आज मौजूदा वित्तीय वर्ष है उसमें जो हमारा वित्तीय घाटे का लक्ष्य है 4.4%, सरकार उसको पूरा करने के लक्ष्य पे बड़े अच्छे से आगे जा रही है। इसको आप कैसे देखते हैं?
देखिए पहले वित्तीय घाटा साधारण हमारे श्रोता कहेंगे कि भाई इससे हमें क्या लेना देना
जी।
लेकिन किसी को अगर अपेक्षा रहे कि हमारे इनकम की में बढ़ोतरी हो, बजट से हमारे एम्प्लॉयमेंट की ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो
जी।
हमारे बच्चे को ज्यादा ट्रेनिंग के अवसर मिले, ये सभी चीजें तभी संभव होता है जब सरकार लोगों से सिर्फ उतना ही टैक्स ले और उस टैक्स का सदुपयोग करे तब जाके लोगों के लिए फैसिलिटीज बनता है। तो इसका एक बहुत बड़ा मापदंड रहता है फिस्कल डिफिसिट कि सरकार अपना घर चलाने की जो खर्च है उसमें किफायती संक्षेप में और जोरदार तरीके से कर रहा है यानी। और जैसा आपने अभी जिक्र किया कि इस साल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमन जी अभी जब वो बजट पेश करेंगी तो उसमें जो उनका जो टारगेट था इस साल के लिए 4.4% ऑफ द जीडीपी पे ही अपना खर्च सीमित रखेंगी, फिस्कल डेफिसिट को सीमित रखेंगी, तो बिल्कुल वही रहेगा। और वही नहीं रहेगा, अगले साल के लिए वो इसको और भी आगे बढ़ाएंगी कि इसमें और भी ज्यादा उन्नति किया जाएगा। और ये सिर्फ एक साल का नहीं, कई सालों से जब से कोविड का वार खत्म हुआ है तब से भारत सरकार ने फिस्कल डेफिसिट में जब वो 9.2% बन गया था कोविड के टाइम में वहां से काफी सशक्त कदम उठाते हुए फिस्कल डेफिसिट को नीचे उतारते हुए लाए हैं। तो ये उसका नतीजा जैसे आप अभी देख रहे थे कि जीडीपी के नतीजे उसमें बाकी सारे जो अच्छे इन्फ्लेशन की जो दौर देख रहे हैं कि सॉफ्ट इन्फ्लेशन है ये सारे तभी संभव हुआ है क्योंकि हमारे फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है।
आर्थिक समीक्षा में जैसे हमने कहा कि बहुत सारे आंकड़े थे भारत की विभिन्न जो क्षेत्र है हमारी अर्थव्यवस्था के उनमें कितनी वृद्धि हुई है कितना विकास हुआ ये सब बातें हुई पर कुछ चुनौतियों की भी बात की गई है जिसमें से एक चुनौती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर है। तो आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि दुनिया के सबसे तेज एल्गोरिथम या सबसे शानदार मॉडल के पीछे भागने की बजाय भारत एआई को रोजमर्रा की चुनौतियों के समाधान के तौर पर पेश कर रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं?
कुछ दिनों पहले आकाशवाणी के श्रोताओं को सुनने को मिला था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने डावोस में जो अपना वक्तव्य रखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि एप्लीकेशन एआई यानी कि एआई के कितने तरह के एप्लीकेशंस होंगे इसमें भारत चोटी पे रहेगा। और ये एक दावा ऐसे अचानक नहीं निकला है बट सच में जो हम ट्रेंड्स देख रहे हैं उनमें हम यही देख रहे हैं कि फाउंडेशनल मॉडल्स ऑफ एआई यानी कि एआई बनाने की जो फाउंडेशन मॉडल्स है उसमें इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए उसमें रिसर्च होनी चाहिए लेकिन उससे भी ज्यादा उसको किस तरीके से एक एंटरप्राइज काम में ला सके वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज बन जाता है। और बिल्कुल उसी की तरफ अगर हम ध्यान दें तो अभी जो आप कर रहे थे कि रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरीके से एआई को इस्तेमाल किया जाए और आप देखेंगे कि भारत में हमारे जो कामगार के लोग हैं उसके करीब 51% सेल्फ एम्प्लॉयड है
जी।
तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए एआई एक बहुत बड़ा साधक बन जाता है बहुत बड़ा हेल्प बन जाता है। कंपनी में काम करने वाले कई लोगों के लिए ये चैलेंज बनता है कि उनके काम रहेगा या एआई का काम रहेगा लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए एआई हमेशा ही एक काम को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा मददगार साबित होता है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये एक बहुत ज्यादा ही सपोर्टिंग सिस्टम बन सकता है।
एक और चुनौती जिसकी बात आर्थिक समीक्षा में की गई है या खतरा जिसको हम कहें वो है डिजिटल एडिक्शन के बारे में। उन्होंने खासकर जो डिजिटल एडिक्शन की हम बात कर रहे हैं वो बच्चों में और युवाओं में एडिक्शन को कितना बढ़ रहा है उन्होंने उसको हाईलाइट किया है और उससे निपटने के बहुत उन्होंने तरीके बताए हैं। तो इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और खासकर ये जब आर्थिक समीक्षा जैसे एक डॉक्यूमेंट में इसकी बात होती है तो वो क्यों जरूरी हो जाती है?
इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ देखने के लिए सिर्फ सरकार के कामकाज के एक ब्यौरा ही नहीं रहता है। इकोनॉमिक सर्वे में बहुत ज्यादा आलोचना रहता है डिस्कशन रहता है कि जो आने वाले दिनों के लिए सरकारी नहीं समाज में किस तरह के अर्थनैतिक पॉसिबिलिटीज जैसे हम एआई की बात कर रहे हैं किस तरह के अर्थनैतिक चैलेंजेस तो उनमें डिजिटल एडिक्शन एक बहुत बड़ा चीज भी रहता है क्योंकि अगर हमारे युवा पीढ़ी अगर बहुत ज्यादा एआई को इस्तेमाल करने के बजाय एआई से प्रोड्यूस चीजों पर अपना ध्यान उसमें निपट जाए तो निश्चित ही वो एक नेगेटिव चीज बन जाता है लेकिन उसको आप रोक तो नहीं सकते हैं। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप देखिए कि भाई इसके लिए इनसे उनको छुड़वाकर किन चीजों में उनको अपॉर्चुनिटीज दिलवा सके किस तरीके का नए प्रयोग सामने ला सके ताकि वो इसमें ध्यान लगा सके। इन सभी चीजें सिर्फ भारत में नहीं सारी दुनिया में चल रहा है लेकिन हमारे देश में हम जब मानते हैं कि दुनिया का नॉट ओनली 1.5 बिलियन पॉपुलेशन आउट ऑफ 7 बिलियन पॉपुलेशन उसमें भी ज्यादातर यंग पॉपुलेशन है तो उनका किस तरह से इस्तेमाल हो सके ताकि वो एक बहुत बड़ा यूजफुल सोर्स ऑफ इनकम खुद के लिए नहीं देश के लिए भी और चारों तरफ भी वो एक रिसोर्स है जिस रिसोर्स को हम करना चाहें
संसाधन
तो उसमें डिजिटल एडिक्शन की जो डिस्कशन है वो फिर काफी मायने रखता है। जी
शुभमोय आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए हमारे साथ आर्थिक समीक्षा 2025-26 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
श्रोताओं आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में